الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الفتحہ کی تفسیر ہم اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے آیت نمبر 8, 9 اور 10 کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. تو اب پیج نمبر 71 کے اوپر ہم معارف و مسائل پڑھ رہے تھے انہیں آیات کی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو مخاطب ہو کر کے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، ٹھیک ہے، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اس کے بعد پھر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لے کر کے آؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو. توقیر عظمت رکھو، یعنی کسی کو عظیم کے طور پہ ٹریٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، صرف عظمت بیان کرنا نہیں بلکہ عظیم کے طور پہ ٹریٹ بھی کرنا، بڑے کے طور پر اس کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا. تو وقت روح توقیر کرنا اسی کو کہتے ہیں. وَتُسَبِّحُوهُ اور تم تسبیح کرو اس کی، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، بے شک وہ لوگ جو کہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، يُبَايِعُونَكَ جنہوں نے آپ سے بیعت کی یا کر رہے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، یبایعونک، بلکہ کریں گے تو خیر فیوچر کی بات تو یہاں پر نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اپنا بتائیے کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو جنہوں نے آپ سے بیعت کی، یبایعونک، انما یبایعون اللہ، تو وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پس ان میں سے جو توڑے گا اپنے قول کو، بس سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی توڑے گا یا اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. ومن اوفا، اور جو کوئی عہد کو پورا کرے گا، وفا کرے گا، بما عہد علیہ اللہ، اس چیز کو، یعنی وفا کرے گا اس چیز کو کہ جس پر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب اس کو وہ دے گا ایک عظیم اجر، ٹھیک ہے. تو یہ تو ترجمہ ہم نے ریپیٹ کر لیا. اب معروف مسائل تو باقی ہم پڑھ چکے تھے. اب تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، تو یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا تھا، جو کہ پیج نمبر 71 کے اوپر لاسٹ 8th لائن ہے، ٹھیک ہے، آخر سے 8th جو لائن بنتی ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ تعزیروہ کا مطلب کیا ہے، یہ تعزیر سے مشتق ہے، یعنی ڈرائیوڈ ہے یہ لفظ تعزیر سے، ٹھیک ہے. تعزیروہ تو تعزیر سے مشتق ہے، جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے، تعزیر کا مطلب مدد کرنا. اچھا، سزا کو جو تعزیر کہا جاتا ہے، شریعت کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ مجرم کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو سزا وہ ہوتی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفائن کر دی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسی نے قتل کیا ہے उसकी सजा जो है वो कत्ल है, कि उसको भी कत्ल किया जाएगा, या ये कि फिर वो खून बहा दे दे। मकतूल के खानदान वालों की मर्जी अगर हो जाए कि ठीक है हम इसको माफ करते हैं, लेकिन इसके बदले वो हमें, यानी हम इसके कत्ल को, इसके खून को माफ करते हैं, लेकिन इसके बदले हमें वो कोई रकम अदा करे, ठीक है, तो उस रकम को ना खून बहा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी वो कोई रकम होगी, जैसे आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो शायद 5 करोड़ रुपए, पाकिस्तान के 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो खानदान वाले कह सकते हैं कि ठीक है, अब तुम हमें 5 करोड़ रुपए अदा कर दो तो हम तुम्हारी जान बख्शी करते हैं, ठीक है। तो काजी साहब कहेंगे ठीक है, तो ये जिसने कत्ल किया है ना कातिल, ये मकतूल के खानदान वालों को 10 यानी 5 करोड़ रुपए दे दे और इसको फिर कत्ल नहीं किया जाएगा। किसास कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसको किसास भी कहते हैं, यानी इस वाले को किसास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शरीयत की सजाएं होती है ना, हुदूद और किसास इनको कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिनके अंदर शरीयत ने सजाएं मुकर्रर नहीं करी हैं, बल्कि जो हाकिम होता है या जो काजी होता है उसके ऊपर छोड़ा है कि काजी अपने हिसाब से कोई सजा दे दे, ठीक है। तो ये जो सजा काजी लगाएगा ना या हाकिम लगाएगा, उसको ताजीरी सजा कहते हैं, ताजीरी सजा, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सजा को जो ताजीर कहा गया है, कहा जाता है, वो भी इसलिए कि मुजरिम की मदद हकीकी इसमें है कि उस पर सजा जारी की जाए, ठीक है ना। यानी सजा देना मुजरिम को, ये एक्चुअली उसकी मदद है। क्यों? इसलिए कि अगर उसको इस दुनिया में सजा नहीं मिली तो आखिरत में उसको सजा मिलेगी, और वो आखिरत की सजा उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। तो गोया कि इस दुनिया में उसको सजा दे करके ना आप उसके साथ मेहरबानी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ना उस सजा को भी ताजीर कहा जाता है, ठीक है। हालांकि ताजीर का मतलब क्या है? मदद करना किसी की। बहरहाल यहां पर जो अल्लाह ताला ने ताजीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये सजा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि ये खालिसतन मदद के ही कॉन्टेक्स्ट में है, यानी लफ्ज को उसके हकीकी मानों में अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। हकीकी माना क्या है? जो डिक्शनरी का लफ्ज होता है, डिक्शनरी वाला जो मानी होता है, तो उसको हकीकी माने भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मदद के मानी में इस्तेमाल किया है कि तुम मदद करो उसकी, ठीक है। अच्छा, तो वक्त रूह ये तौकीर से मुश्तक है, जिसके मानी है ताजीम, यानी किसी को अजीम रखना, अजीम बनाना, ठीक है, बड़ा बनाना। तो सब्बिहू ये तस्बीह से मुश्तक है, डिराइव्ड है, मुश्तक मीन्स यानी उसमें से निकाला गया है, उसमें से ड्राइव किया गया है इसको, जिसके मानी पाकी बयान करने के हैं, यानी ये कहना कि वो पाक है, गुनाहों से पाक है, गलतियों से पाक है, कोताहियों से पाक है, मिस जजमेंट से पाक है, मिस्टेक से पाक है। यानी अल्लाह ताला की जब तस्बीह करते हैं ना, तो हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला से कोई गलती नहीं होती, अल्लाह ताला किसी, यानी जैसे कि एक इंसान होता है ना कि जी उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो नाशुक्री करने लगता है, कहने लगता है कि भाई अल्लाह ताला को एक मैं ही मिला था ये मुसीबत भेजने के लिए, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों ये मुसीबत भेज दी है, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आती। तो ये शख्स एक्चुअली क्या कह रहा है? इन रियलिटी ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने गलत फैसला किया इसके ऊपर मुसीबत भेज करके, अल्लाह ताला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाऊज़ बिल्ला, ठीक है। या ये कि किसी दूसरे को देखता है कि उसको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हुई हैं, बड़ा माल दौलत पैसा, तो अब ये दिल में कहना शुरू कर देता है कि क्यों दिया उसको, उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था, ही डिड नॉट डिजर्व इट, उसने कौन सा ऐसा काम किया कि उसके ऊपर जो है वो इतनी दुनिया की नेमतें खुल गई, उसने कौन कौन सा ऐसा काम किया कि उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतें दे दी। तो ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि अल्लाह ताला ने गलत फैसला किया, उसको नेमतें दे दी, हालांकि मिलनी तो मुझे चाहिए थी, मैंने अच्छे काम किए थे, है ना, मुझे मिलनी चाहिए थी इज्जतें और नेमतें और हुकूमतें और सारी चीजें, है ना। तो ये क्या कह रहा है? ये अल्लाह ताला के लिए नाउज बिल्ला नापाकी बयान कर रहा है, कि कह रहा है कि अल्लाह ताला से गलती हो गई, अल्लाह ताला गलतियां करते हैं, अल्लाह ताला मिस्टेक्स करते हैं, मिस जजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो तस्बीह क्या है? तस्बीह ये कहना है कि नहीं, अल्लाह ताला मिस्टेक्स नहीं करते हैं, जिसको दिया है बिल्कुल ठीक दिया है और जिसको नहीं दिया है बिल्कुल ठीक नहीं दिया है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो, ठीक है। तो तस्बीह के हकीकी मानी ये होते हैं। इसी वजह से जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे तो उन्होंने क्या किया था, वहां जा करके अल्लाह की तस्बीह बयान करी थी, ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद सिवाय आपके, सुबहानका, आप हर नुक्स से पाक हैं। ये जो मैं मछली के पेट में पहुंचा हूं ना, ये मैं आपकी गलती की वजह से नहीं कि आपने ये क्या किया, पहले मुझे नबी बनाया फिर मुझे सजा दे दी, ये क्या बात हुई भाई, पहले मुझे अपना काम दे करके भेजा लोगों के, यानी अपने बंदों को आपसे जोड़ने का काम, और उसके बाद मुझे मछली के पेट में पहुंचा दिया, ये क्या बात हुई भाई, है ना, ये भी कोई बात हुई, जैसे हम लोग करते हैं ना इस तरह की बातें, ये भी कोई बात हुई नहीं, बल्कि क्या फरमाया, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था, मैंने ही गलती करी थी, आपने कोई गलत नहीं किया मुझे मछली के पेट में पहुंचा करके। ये होती है तस्बीह, अपनी गलती का एतराफ करना और अल्लाह ताला को हर किस्म की गलतियों से मुबर्रा करार देना, पाक करार देना, ठीक है। तो ऐसी तस्बीह करें ना तो फिर क्या होता है कि मछली के पेट में जिसके अंदर हम फंसे हुए होते हैं ना, फिर अल्लाह ताला हमें उस मछली के पेट से निकाल लेते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला और फरमा भी दिया अपने कुरान के अंदर कि इसी तरीके से हम कयामत तक ईमान वालों को उनकी मछलियों के पेट में से निकालते रहेंगे अगर वो इस तरह से तस्बीह करते रहेंगे, ठीक है, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने करी थी, ठीक है ना। तो दूसरों को ब्लेम करना, इंजाम देना, उसने ये कर दिया इस वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आ गई और हम मुसलमान आजकल इतने ज्यादा क्यों परेशान है, क्योंकि हिंदू ऐसा करता है और यहूदी ऐसा करता है और ईसाई ऐसा करता है और फलाना ऐसा करता है और ढिमकाना ऐसा करता है, ये जो राग अलापते रहते हैं ना हम लोग, तो ये राग अलापना असल में वजह है हमारी मुसीबत। अगर हम ये राग अलापने छोड़ देना और अल्लाह की तस्बीह यूनुस अलैहिस्सलाम के तरीके से बयान करना शुरू कर देना या आदम अलैहिस्सलाम के तरीके से बयान करना शुरू कर देना, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ए अल्लाह हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, वइल्लम तग़फिर लना, और ए अल्लाह अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो ज़रूर बिलज़रूर हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ऐसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना शुरू करें अगर हम, ठीक है ना, तो फिर अल्लाह ताला हमें इस मुसीबतों से निकाल देंगे। कोई मसला है अल्लाह ताला के लिए निकाल लेना अपने ईमान वालों को, अपने मानने वालों को मुसीबत से? नहीं, कोई मसला नहीं। मसला सारा का सारा हमारा है कि हम एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम मानते ही नहीं, हमें अपने गुना नजर ही नहीं आते, ठीक है। तो तस्बीह करना, तो ये तो सब बेहू तस्बीह से मुश्तक है जिसके मानी पाकी बयान करने के हैं। इनमें आखिरी लफ्ज तो मुतय्यन है, यानी कंफर्म है आखिरी वाला वर्ड तो सब बेहू कि अल्लाह ही के लिए हो सकता है, इसलिए कि तस्बीह जो है ना ये अल्लाह के अलावा आप किसी की नहीं कर सकते, कोई ऐसा है ही नहीं कि जो कि हर किस्म के गलतियों से पाक हो। हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, बशरी गलती भी हो सकती है, चाहे नबी भी क्यों ना हो, नबी से भी बशरी गलती तो हो सकती है ना, तबीयी गलती तो हो सकती है ना, जैसे कि हम बार बार पढ़ते हैं सब तफसीर के अंदर, ठीक है। तो तस्बीह तो सिर्फ अल्लाह ताला की बयान की जा सकती है, इस वजह से फरमाया कि जो आखिरी वर्ड है ये तो मुतय्यन है कि अल्लाह ही के लिए हो सकता है, इसलिए तो तसब्बिहू की ज़मीर, ज़मीर किसको कहते हैं, प्रोनाउन को, तो ये जो हु है ना आखिर में ये प्रोनाउन है, कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, इंग्लिश में ज़रा समझना आसान है इस वाले कॉन्सेप्ट को कि क्या कहते हैं, एंड टू स्पीक हिज प्योरिटी, स्पीक हिज प्योरिटी, या टू डिक्लेयर दैट ही इज प्योर, तो जो ही है ये प्रोनाउन है, तो ही से कौन ही मुराद है, हु ही इज प्योर, ही इज पॉइंटिंग टू अल्लाह सुभानहु तआला। तो ये जो प्रोनाउन है, यानी ये जो जमीर, अरबी में उस प्रोनाउन को जमीर कहते हैं, प्रोनाउन को जमीर कहते हैं, ठीक है। तो सब्बिहू की जमीर में बजुज इसके कोई इहतमाल नहीं कि हक तआला की तरफ राजिअ हो, राजे मीन्स पॉइंट कर रहा हो, ठीक है ना, कि इसका जो नाउन है, इस प्रोनाउन का जो नाउन है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो सब्बहू हु इज पॉइंटिंग टू अल्लाह सुबहान व तआला। इसमें कोई एहतमाल नहीं कि अल्लाह के अलावा भी कोई मुराद हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज तस्बीह किसी कर ही नहीं सकते आप अल्लाह के सिवा, ठीक है। इसीलिए अक्सर हजरात ने, हजरात से मुराद मुफस्सरीन हजरात, तो अक्सर मुफस्सरीन हजरात ने पहले दोनों जुमलों की ज़मीरें भी अल्लाह ताला की तरफ राजे करके मानी ये करार दिए हैं कि ईमान लाओ और अल्लाह की यानी उसके दीन और रसूल की मदद करो और उसकी तअज़ीम करो और उसकी तस्बीह करो, ठीक है ना। यानी चूंकि तस्बीह सिर्फ अल्लाह की जा सकती है, तो ये तो डिटरमिन हो गया ना कि तसब्बुहु की ज़मीर अल्लाह की तरफ पॉइंट हो रही है, अल्लाह की तस्बीह करो, तो चूंकि ये अल्लाह की तरफ पॉइंट हो रही है, इस वजह से बाकी जो प्रोनाउंस हैं, तो वक्त रू के आखिर में जो हु है और तुअज़्ज़िरू के आखिर में जो 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 हु है वो भी अल्लाह ही की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दिस क्लियरिटी कि तुसब्बिहू का जो हु है वो अल्लाह की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बाकी हु भी यानी बाकी प्रोनाउंस भी अल्लाह ही की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो फिर क्या तर्जुमा बनेगा कि ईमान लाओ, ये तो मिनु बिल्लाही, यहाँ पर तो नाउन एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है ना जुमले के अंदर, अल्लाह इज द नाउन, यहाँ तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं, व रसूल ही, और अल्लाह का रसूल, तो रसूल तो अल्लाह ही का होता है, किसी और का रसूल को थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डिटरमिंड है ही, लेकिन जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु के बारे में है, ठीक है ना, कि इनमें जो प्रोनाउन है ये किसकी बात हो रही है, कि किसकी मदद करो, किसकी अजमत रखो। तो मुफस्सरीन ने यानी अक्सर मुफस्सरीन ने क्या कहा कि चूंकि तुसब्बिहूहु अल्लाह के लिए ही है और तुमिनु बिल्लाही व रसूलिही उसमें भी अल्लाह ताला ही डिफाइंड हैं, तो इस वजह से तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु में भी अल्लाह ताला ही मुराद है। तो अल्लाह ताला की मदद करो, क्या मतलब भाई अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला को कोई हमारी मदद की जरूरत है, हम कैसे अल्लाह ताला की मदद करें। तो अब इसको एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ताला की मदद करने से मुराद ये है कि उसके दीन की मदद करो, उसके रसूल की मदद करो, ठीक है, और ताजीम करो, ये भी अल्लाह ताला के दीन की ताजीम करो, अल्लाह ताला के रसूल की ताजीम करो और उसकी तस्बीह करो, ठीक है। तो अब ये एक तफसीर बन गई इस आयत की, यानी अल्लाह ही की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, ये तो एक तफसीर हो गई इस आयत की। इस आयत की एक और भी तफसीर है जो कि आगे इन्होंने लिखा कि बाज़ हज़रात ने पहले दो जुमलों की ज़मीर रसूल की तरफ राजे करके मतलब ये करार दिया कि रसूल की मदद करो और ताज़ीम करो और अल्लाह ताला की तस्बीह करो, ठीक है। मगर बाज़ वफ़त अच्छा यानी यहाँ पर यानी दूसरी तफसीर ये है कि रसूल की मदद की बात हो रही है, रसूल की ताज़ीम की बात हो रही है, ठीक है ना, अल्लाह की मदद और अल्लाह की ताज़ीम की बात नहीं हो रही बल्कि रसूल की मदद, रसूल की ताज़ीम की बात, थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों के अंदर। हो सकता है कोई कहे कि भाई वो भी तो आप यही कह रहे थे कि रसूल की मदद करो और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि रसूल की मदद करो, लेकिन नहीं, ठीक है ना, फ़र्क ये है कि वहाँ पर अल्लाह के दीन और रसूल की मदद की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो दीन की मदद तो किसी वक्त भी की जा सकती है, आज के दौर के अंदर भी दीन की मदद की जा सकती है ना, अल्लाह के दीन की मदद करो यानी तबलीग के अंदर अपना वक्त लगाओ, तबलीग के अंदर जो है वो अपना अपना माल लगाओ, तबलीग के अंदर जो है वो अपना अपना जहन लगाओ, अपनी सलाहियतें लगाओ, ये सब का सब अल्लाह ताला की दीन की मदद है, ठीक है। लेकिन रसूल की मदद तो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त की जा सकती थी ना जिस वक्त रसूल मौजूद थे, तो फ़र्क तो है ना इन दोनों के अंदर। तो बहरहाल दूसरी तफसीर के मुताबिक जो है वो रसूल की मदद करो, रसूल की ताज़ीम करो और अल्लाह की तस्बीह करो, ठीक है, ये दूसरी तफसीर हो गई। मगर बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया कि अगर हम ये दूसरी वाली तफसीर देंगे ना कि जिसके अंदर तो वक्त रूह तो अज़रूह तो अल्लाह ताला तो रसूल के लिए है लेकिन तो सब्बहू अल्लाह के लिए है, ठीक है, तो इसके अंदर इंतशार ज़मायर लाजिम आता है। इंतशार ज़मायर क्या मतलब कि प्रोनाउंस के जो नाउन हैं उनमें इंतशार ज़रूरी हो गया, फिर इंतशार हो गया ना फिर कि एक ही जुमले के अंदर दो प्रोनाउन्स आप कह रहे हैं कि उनका नाउन डिफरेंट है और तीसरा प्रोनाउन आप कह रहे हैं कि उसका नाउन डिफरेंट है, तो इसको इंतिशार जमायर कहते हैं कि भाई आपने जमायर यानी यानी जो नाउन्स हैं ना उनके जो नाउन्स हैं उनमें आपने फर्क कर दिया। तो ये ना ग्रामेटिकली दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, ये बहुत ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है जुमला बयान करने का कि जिसके अंदर आप तीन प्रोनाउन्स यूज करें, बजाहिर तीनों प्रोनाउन्स एक जैसे प्रोनाउन्स हों, ठीक है, हिम 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 तीनों ही हिम हैं, या हिज 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 तीनों ही हिज हैं, लेकिन दो हिज जो है ना वो आप किसी और की तरफ पॉइंट कर रहे हो और एक हिज आप किसी और की तरफ पॉइंट कर रहे हो, ये ग्रामेटिकली अच्छा जुमला नहीं कहलाता या अदब के हिसाब से ये अच्छा जुमला नहीं कहलाता। तो इंतशार जमायर जो है ना ये अच्छी बात नहीं है, यानी ये लैंग्वेज के हिसाब से अच्छी बात नहीं है, बलागत के खिलाफ है, फसाहत और बलागत यानी अच्छी जो 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 लैंग्वेज होती है वो उसको कहते हैं बहुत ही बलीग लैंग्वेज है, बहुत ही फसीह लैंग्वेज है। तो कुरान तो बहुत ही फसीह और बलीग कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम है, फसीह है बलीग है। तो ये बात समझ ये बात सही नहीं लगती कि इंतशार जमायर के साथ अल्लाह ताला कोई बात करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो पहली तफसीर है ना वही तफसीर जो है वो ज्यादा दिल को लगती है, वही तफसीर ज्यादा आसानी से समझ में आती है कि जिसके अंदर जितने भी हु हैं जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे अल्लाह ही की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। चले जिसको समझ में आ गई ये बहस अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, बस ये आपको थोड़ा सा इन्होंने भी और साजिद ने भी जरा ग्रामर का टच दिया ताकि आप में भी थोड़ा सा शौक पैदा हो के हम भी जरा अरबी की ग्रामर पढ़ें, हम भी अरबी जुबान को सीखने की कोशिश करें ताकि जब हम कुरान को पढ़ें तो ये सारी बातें फिर हमारे समझ में भी आ सकें, ठीक है। तो बहरहाल ये डिस्कशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा क्या है कि तज़ीम ज़ौ से होता है, ज़ौ ज़ से नहीं, यहाँ पर लिखा भी तो नज़र आ रहा है ना, फिर तज़ीम तज़ीम का लिखा हुआ नहीं था, ज़ौ से होता है, तौ के बाद जो आता है। तो तज़ीम रसूल करने में कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं, तज़ीम रसूल करने में कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं, रसूल की तज़ीम में वही चीज़ें दाखिल हैं जो किसी की भी तज़ीम करने में दाखिल होती हैं, यानी कि उसकी इज्जत की जाए, ठीक है ना, उसके साथ इज्जत से पेश आया जाए, उसके साथ यानी अकीदत से पेश आया जाए, एहतराम से पेश आया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वो आपको कुछ करने को कह रहा है तो उस बात को करने की कोशिश की जाए इखलास के साथ, नेकनीयती के साथ करने की कोशिश की जाए, इग्नोर ना किया जाए, है ना, उसकी बातों को इग्नोर ना किया जाए बल्कि बहुत गौर से सुन करके समझ करके अमल करने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो तज़ीम के लिए लाजिमी हैं, इनके बगैर तज़ीम नहीं हो सकती, है ना, जैसे कि करते हैं ना बहुत सारे हम लोग, वो बत्तियां जलाते हैं, लाइटें लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं तज़ीम करने के लिए, ये तज़ीम है ना, लेकिन ना तो बात पे अमल करते हैं, ठीक है ना, और ना बात गौर से सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है बस जुलूस निकाल लिया और झंडियां लगा ली और बत्तियां लगा ली, है कुमकुमे लगा दिए और चिरागा कर लिया और रातों को जो है वो नाइट आउट मस्जिदों में नाइट आउट स्पेंड कर ली, तो ऐसे तज़ीम रसूल नहीं होती, बल्कि तज़ीम रसूल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी का मकसद था उस मकसद को पूरा करने में अपने अपने सोचों को लगा देना, अपनी सलाहियतों को लगा देना, ये तज़ीम रसूल होती है, ठीक है। आगे चलें, अच्छा इन्होंने वल्लाहु आलम भी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तफसीरें जो मुफस्सिरीन ने बयान करी है ना ये दोनों की दोनों इहतमाली दर्जे में, कोई हदीस पाक ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर ये आप ने बता दिया हो कि भाई ये जो तवक्रूह और तवज़रूह है ना ये तो मेरे बारे में है और तो सब बेहू जो है वो अल्लाह ताला के बारे में है, तो ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, अगर हदीस होती तो कन्फर्म हो जाता कि हाँ यही मतलब है इसका, लेकिन चूंकि हदीस मुबारक नहीं है ना जो है वो किसी सहाबी से ये बात मनकूल है कि भाई उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर के ये बात बताई होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो फिर मुफस्सिरीन जो ये तफसीर बयान करते हैं ये कहलाती है इहतमाली दर्जे में तफसीर बयान करना, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी के साथ कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अलबत्ता ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो पहली वाली तफसीर ज्यादा समझ में आती है। तो इसी वजह से ना साथ वल्लाहु आलम के अल्लाह ताला नोज बेस्ट, अल्लाह ताला ज्यादा इल्म रखने वाले हैं इस बात का। हमने तो इहतमाली दर्जे में जो बात समझी है वो आपके सामने बयान कर दी है, ठीक है। इसके बाद इस बैत का जिक्र है जिसका वाकया किस्से हुदैबिया के जुज़्वे दहम में गुजर चुका है। जैसे जब हमने हुदैबिया का पूरा वाकया पीछे पढ़ा था तो उसमें हजरत ने जुज़्व पार्ट्स बना बना करके उनको एक्सप्लेन किया था, तो जो 10th पार्ट था उसमें ये बात गुजर चुकी थी। इस बैत के यानी बैत के मुतालिक बात गुजर चुकी थी। तो इस बैत के मुतालिक हक तआला ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ये बैत की, चूँकि मकसूद इससे अल्लाह के हुक्म की तामील और रजा जोई है, अल्लाह की रजा हासिल करना है, इसलिए गोया खुद अल्लाह ताला से बैत की, ठीक है। और जब उन्होंने रसूल के हाथ में हाथ दिया तो गोया अल्लाह के हाथ पर बैत करी। अल्लाह का हाथ मुतशाबिहात में से है, जिसकी कैफियत और हकीकत ना किसी को मालूम है, ना मालूम करने की फिक्र में रहना दुरुस्त है। इस बैत की फजीलत आगे भी आ रही है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला का जो हाथ का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यदुल्ला, तो इस यानी एग्जैक्टली अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, ठीक है, क्या उसके अंदर 5 उंगलियां हैं, क्या उसके अंदर भी एक अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं जैसे हमारे हाथ में होती हैं, या अल्लाह ताला का हाथ जो है चूंकि वो बहुत सारे काम करता है तो उसके अंदर जो है ना वो 1000 उंगलियां होनी चाहिए, और उसका अंगूठा जो है ना वो अंगूठा भी कुछ ऐसा किस्म का होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से जो है वो बहुत ज़्यादा वो अंगूठा सब किया जा सके। ये सारी डिस्कशंस जो है ना, ये डिस्कशंस जो हैं ये बिदअत है, बिदअत, ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशंस ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी करी, ना रसूल, ना सहाबा कराम ने कभी करी, ठीक है ना। और इनके अंदर करने से इवन जो फुकहा हैं, उलमा हैं, उन्होंने भी मना किया, ठीक है, कि भाई इन डिस्कशंस के अंदर अगर तुम पढ़ोगे तो ये एक सईय ला हासिल होगी, एट द मिनिमम कम से कम ये क्या चीज़ होगी, एक ला हासिल मेहनत, यानी एक ऐसी मेहनत जिसके करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कम से कम वक्त का ज़िया है ये, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा तुम्हें कोई नहीं होगा बल्कि इससे तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी फिक्र के अंदर, सोच के अंदर लग जाओगे कि जिस सोच से जो है ना, फिर क्योंकि ये सोच जो है वो सुन्नत तो है नहीं, ये है तो बिदत, क्योंकि सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी करी नहीं थी, तो अब क्या होगा, शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा तुम्हारे दिल के अंदर वसवसे डालने का और ऐसे ऐसे ख्यालात डालने का दरवाज़ा खुल जाएगा कि जिसके नतीजे में ना तुम किसी बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाओगे, किसी अकीदे के फसाद में मुब्तला हो जाओगे। इस वजह से ना इस डिस्कशन के अंदर पढ़ने से मना कर दिया, ठीक है, कि अल्लाह का हाथ कैसा होता है। अच्छा, यहां तो सिर्फ अल्लाह के हाथ का जिक्र है, दीगर मुकामात पर तो अल्लाह ताला के चेहरे का भी जिक्र है, वजहुल्लाह, अल्लाह ताला का चेहरा। तो अल्लाह ताला का चेहरा आप कैसा है, उसके ऊपर क्या एक नाक है या दो नाकें हैं उसके ऊपर, हैं दो आंखें हैं कि 10 आंखें हैं उसके अंदर, जुबान है कि उसके अंदर कि नहीं है जुबान, ये डिस्कशंस करना, ठीक है। तो ये डिस्कशन भी वैसी हो गई कि जिससे कि मना कर दिया कि शैतान के लिए यानी रास्ते मत खोलो अपने अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, कि वो घुस करके फिर इस किस्म के वसवसे डाले। तो इस इन सब बातों को ना मुतशाबिहात फरमाया, ठीक है, और इन मुतशाबिहात के अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं, यदुल्ला, वजहुल्ला, साक, साक भी अल्लाह ताला की पिंडली। तो क्या मतलब है अल्लाह ताला की पिंडली का, तो लफ्ज साख भी जो आता है ना, वल्तफत साक बिस्साक इला रब्बिका यौम इज़्न अल-मसाक सूरतुल क़यामा के अंदर, तो ये भी मुतशाबिहात में से, क्योंकि इसकी भी हकीकत हम नहीं जान सकते, ठीक है। उसी तरीके से जो हरूफ मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम, ये सारे के सारे ये भी हरूफ मुक़त्तआत में से हैं। उसी तरीके से जो सूरतुन नूर के अंदर अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ताला समावात और जमीन का नूर है। तो अब ये क्या मतलब है इसका, क्या मतलब नूर है? तो ये भी मुतशाबिहात में से ही, वो वाली आयत भी मुतशाबिहात में ही आती है, ठीक है। तो इनकी कैफियत और हकीकत ना किसी को मालूम है और ना मालूम करने की फिक्र में रहना दुरुस्त है, ठीक है। इस बैत की फजीलत आगे भी आ रही है, क्या मैंने ये भी सुना है किसी हदीस में कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ क्या है, इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकती है भाई, रोमन में लिखते हैं तो ज्यादा शायद आसान हो जाता पढ़ना, दाहने हैं, राइट हैंड, किसी हदीस में कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहने हैं, इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकती है मुझे नहीं मालूम, उसके जवाब मेरे पास नहीं है। अगर वो कोई हदीस है भी ऐसी तो मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। तो जो इल्म है वो तो कम से कम आपके सामने रखे ना। तो लफ्ज़ बैत दरअसल किसी ख़ास काम पर अहद लेने का नाम है। बैत करने का मतलब क्या होता है, अहद लेना, वादा लेना। इसका कदीम और मसनून तरीका, यानी जो पुराना चला आ रहा है तरीका इसका, जो कि यानी इवन प्री इस्लामिक डेज के अंदर भी बैत दी जाती थी, ठीक है। तो तरीका क्या है कि बाहम अहद करने वालों का हाथ पर हाथ रखना है, अगरचे हाथ पर हाथ रखना शर्त और ज़रूरी नहीं है, यानी इसके बगैर भी बैत हो सकती है। जैसे कि अगर औरत बैत करे तो औरत को तो गैर महरम के लिए टच करना ही हराम है, ठीक है। तो औरत से जो अगर बैत ली जाएगी किसी भी बात के ऊपर, तो बग़ैर हाथ पे हाथ रखे हुए ली जाएगी, सही है। लेकिन अगर मर्द हैं और सामने मौजूद हैं तो हाथ पर हाथ रख करके बैत ली जा सकती है, इसके बगैर भी ली जा सकती है। नबी अलैहि सलाम ने हाथ पर हाथ रख करके बैत भी ली और कपड़ा फैला करके भी बैत ली, ठीक है, कि भाई एक रुमाल था या कोई इस किस्म की चादर थी उसको फैला दिया और आप सल्लम ने एक साइड से पकड़ लिया उस चादर को, और सहाबा कराम जो सामने मौजूद थे उन्होंने जहाँ जहाँ जिस जिस के हाथ में जो चादर का हिस्सा आया उन्होंने उसको पकड़ लिया। एक बैत का तरीका जो है वो हाथ उठाना भी, कि सबसे कहा कि भाई जो जो वादा करते हैं हाथ उठा लें, तो हाथ उठा लिया सब ने कि हाँ जी हम वादा करते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं बैत करने के। बहरहाल जिस काम के लिए, जिस काम का किसी से अहद किया जाए, इसकी पाबंदी शरअन वाजिब व ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वादे की पाबंदी तो सबको ही पता है ना, वादा पूरा करना, तो ये वाजिब और ज़रूरी हो जाता है अगर आप वादा कर लें तो, ठीक है, और ख़िलाफ वर्जी हराम है। अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी ये है कि जो वादा कर रहे हैं ना, उस वादे का कंटेंट भी हलाल हो। ये नहीं कि किसी हराम के ऊपर वादा किया अब उस हराम को पूरा करना, कि हाँ भाई आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज रात ना तुम्हारे साथ जाकर के शराब पीऊँगा, ठीक है, तो अब वादा कर लिया अब तो पीनी पड़ेगी, नहीं, ये कंटेंट ही वादे का हराम है। तो हराम वादा ये पूरा करना भी हराम है, ठीक है, हलाल वादा होना चाहिए, फिर उसका पूरा करना लाजमी हो जाता है और उसका तोड़ना फिर हराम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी खिलाफ वर्जी हराम है, इसीलिए आगे फरमाया कि जो शख्स इस अहद बैत को तोड़ेगा तो कुछ अपना ही नुकसान करेगा। अब वैसे तो बड़ी यानी कॉमन सेंस वाली बात लगती है कि हाँ भाई आपने शराब पीने पर वादा कर लिया तो उस वादे को पूरा करना हराम है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मसले में मुब्तला होते हैं कि वो बुरी चीज़ का वादा कर लेते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ यानी बाकायदा इस रीज़न की वजह से उस वादे को पूरा करते हैं कि भाई मैंने वादा कर लिया अब मैं क्या करूं, अब तो करना पड़ेगा पूरा। उस वक्त जो है ना ये कॉमन सेंस फिर वो इवेपोरेट हो जाता है उनके अंदर से कि भाई आपने जो वादा किया था ये हराम चीज़ है, इसके वादे को पूरा करना हराम है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो बाकायदा यानी अपने आप को एक यानी इस समझ लेते हैं कि जी अब तो मैंने कह दिया है ना अब तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हराम वादे को पूरा करना हलाल नहीं हो सकता, सही है, उसको तोड़ना पड़ेगा। अब आपने जो तोड़ा है तो अब आप उसका कफारा दे दें, अगर आपने कसम वगैरह खा ली थी, अगर ठीक है ना, अगर आपने कसम खा ली थी कि हाँ मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, ठीक है, लेकिन वो बात जो थी वो हराम थी करने वाली, तो फिर आप कसम का कफारा दे दें, उस बात को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। बहरहाल इस मखबसे में अगर कोई मुब्तला है तो उसको चाहिए कि वो अपनी इस गलती को ठीक कर ले और ऐसे वादे को पूरे करने का इरादा ख़त्म कर दे। तो आगे फरमाते हैं कि इसीलिए आगे फरमाया कि जो शख्स इस अहदे बैत को तोड़ेगा तो कुछ अपना ही नुकसान करेगा, अल्लाह और उसके रसूल को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, और जो इस अहद को पूरा करेगा तो उसको अल्लाह ताला बड़ा अजर देने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो लफ्ज़ बैत है इसके बारे में थोड़ी सी तफसीर बयान करनी ज़रूरी समझते हैं कि बैत का मतलब तो हो गया ना वादा करना किसी के साथ किसी बात के ऊपर भी। ठीक है, तो यानी ये बैत करने का जो अमल होता है ये अमल जो है ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित अमल है, सुन्नत अमल हो गया ये। ठीक है, तो अब ये जो बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली है ना सहाबा कराम से, तो ये मुख्तलिफ शक्लों की बैत ली है। एक शक्ल जो है वो कहलाती है बैत ईमान। ठीक है, जब नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई आता था कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बैत लेते थे। ठीक है, वो बैत क्या थी? कलमा पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूलु, कि बेशक आप अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं, सॉरी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ठीक है, तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से किसी यानी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के मुसलमान होता था ना, तो इस अमल को बैते ईमान कहते थे या बैते इस्लाम। ठीक है, इस्लाम ला रहा है, तो ये असल में क्या कर रहा होता था? ये असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रहा होता था कि मैं आपको अल्लाह का नबी मान करके आपकी बातें मानूंगा, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करके मैं आपके हुक्म के ऊपर अमल करूंगा, जैसे कि करना चाहिए अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल। ठीक है, तो मैं आपके हुक्म के ऊपर अमल करूंगा क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो मुझे हुक्म देंगे वो अल्लाह ही का हुक्म होगा। इसको बैत इस्लाम कहते हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास जब कोई मुसलमान होता था ना तो उससे बाकायदा बैत इस्लाम ली जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो बैत है जो कि हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये क्या कौन सी वाली बैत थी? सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर जो बैत हुई इसको बैत जिहाद कहते हैं, क्योंकि ये बैत जो थी ये लड़ने के लिए बैत थी। वादा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम का कि हम आपके साथ मिल करके लड़ेंगे काफिरों से और अपनी जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये बैत जिहाद कहलाती है। ठीक है, एक और बैत जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से ली, गुनाह ना करने की बैत। वादा करना कि हम फलाना 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 गुनाह नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो बैत कहलाती है वो नॉन मुस्लिम से नहीं ली गई कि भी कोई गैर मुस्लिम आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके मुसलमान हो रहा था, नहीं, वो लोग पहले से मुसलमान थे, ईमान वाले थे, मर्द, ईमान वाली औरतें। ठीक है, उनसे जो बैत ली गई ना वो बैत इस्लाम नहीं थी और ना वो कोई जिहाद का मौका था कि हम लड़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे लड़ने के अंदर, नहीं, वो जिहाद का मौका ही नहीं था, कोई कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा नहीं था। तो वो जो बैत हो रही थी उस बैत को फिर क्या कहते हैं? उसको बैत तौबा भी कहते हैं और उसको बैत तस्किया भी कह लें, मुख्तलिफ नाम है उसके। बैत तौबा उसका सबसे ज्यादा यानी फेमस नाम है, कॉमन नाम है। ठीक है, तो ये जो बैत तौबा है ना, ये बैत तौबा जो है ये काफिरों से नहीं ली जाती, ना ये जो है किसी जिहाद के मौके पर होती है, बल्कि ये जो है ऑलरेडी जो लोग मुसलमान होते हैं उनसे बैत ली जाती है। ठीक है ना, और इस बैत का मकसद क्या होता है कि किसी ऐसे शख्स के साथ ये वादा करना कि हम आपकी गाइडेंस के अंदर अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तौबा वाली जिंदगी गुजारेंगे, नेक बनने की जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, तो ये जो एक बैत होती है ये इस तरह का वादा होता है। ठीक है ना, इसी को जो है वो बैत तरीकत भी कहा जाता है या बैत तसव्वुफ भी कहा जाता है। ठीक है ना, अपनी इस्लाह की बैत। ठीक है, तो जिसके हाथ पर ये बैत की जाती है उसी को जो है वो शेख कहा जाता है, पीर भी कहा जाता है। फारसी जुबान का जो लफ्ज़ है वो पीर है, किसी सीनियर इंसान के लिए पीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है फारसी जुबान के अंदर, और चूंकि उर्दू जुबान के अंदर भी फारसी का असर बहुत ज्यादा है इस वजह से उर्दू के अंदर भी पीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो पीर के साथ बैत की जाती है ना, ये बैत किस लिए की जाती है? अपने गुनाहों की इसलाह के लिए, अपने नफ्स के तस्किए के लिए, ठीक है ना, अपने कल्ब के तस्फिये के लिए, सफाई, कल्ब की सफाई के लिए, ठीक है। और मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ताकि मैं अल्लाह ताला से जुड़ सकूं, ठीक है ना, अल्लाह ताला के करीब हो सकूं, क्योंकि गुनाहों की जिंदगी के साथ मैं अल्लाह ताला के करीब नहीं हो पा रहा, ठीक है। कभी कभार तो बयान सुन लिया, कहीं किसी दुआ में शामिल हो गए तो दुआ कर लेता हूँ, आंसू बह जाते हैं, लेकिन इसके अंदर दवाम नहीं है मेरी जिंदगी, ठीक है। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाकी वक्तों में तो मैं गुनाह कर रहा होता हूँ और मैं जो हूँ वो बहुत ही यानी गाफिल जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यानी ऐसी जिंदगी गुजारूँ कि जिसके अंदर मुझे हर वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब का एहसास हो, हर वक्त अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो। ये जिंदगी जो है वो गुनाहों से तौबा किए बगैर नहीं गुजारी जा सकती। तो इस वजह से ना कोई यानी किसी ऐसे शख्स के साथ जा कर के अपना इस्लाही ताल्लुक बनाता है कि उसकी रहनुमाई में ये गुनाहों से अपने आप को बचा सके, उसकी गाइडेंस के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो ताल्लुक बनाना होता है ना, ये भी ट्रेडिशनली स्पीकिंग बैत के ही जरिए से होता है, ठीक है ना, कि किसी के साथ ये बस इतना वादा किया जा रहा होता है कि मैं आपकी गाइडेंस के अंदर आपकी बात यानी आपको बतौर अपने रूहानी मुआलिज के तौर पर लूंगा और आप जो है जो मुझे करने के लिए कहेंगे वो मैं करूंगा, जिन चीजों से रुकने के लिए कहेंगे उनसे मैं रुक जाऊंगा ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, ठीक है। तो उसको जो है वो बैत तसव्वुफ, बैत तरीकत और बैत तौबा का नाम दिया जाता है। तो ये सारे जो तरीके हैं बैत करने के सारे शरीयत के अंदर मौजूद हैं, कुरान के अंदर भी इनका जिक्र है और हदीस के अंदर भी इनका जिक्र है, ठीक है। चलें ये बात करके हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह ने शुक्रान जी सुना मर रहीम सयकूलु लकल मुखल्लफून मिन अल अराबी के अंतरीब ये कहेंगे आपसे, यकूलु ये कहेंगे लका आपसे, अल मुखल्लफून मिन अल अराबी ये कौन लोग होंगे, अराबी जो के पीछे रह गए, मुखल्लफ किसको कहते हैं, जो के खल्फ में रह गया, खल्फ मींस पीछे, ठीक है। तो मुखल्लफूना पीछे रह जाने वाले, मिनल अराबी ये लोग अनकरीब आपसे कहेंगे शगलतना अम्वालुना हमें मशगूल कर दिया हमारे अम्वाल ने, हमारी मालो दौलत ने हमें मशगूल कर लिया, व अहलूना और हमारे घर वालों ने हमारी फैमिली ने हमें मशगूल कर लिया, फस्तग़फिर लना बस आप हमारे लिए इस्तग़फार कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि अल्लाह इन लोगों को माफ़ कर दे। ये लोग आपके सामने आकर के ना यानी एडमिट करेंगे कि आपने हमें कहा था ना चलने के लिए उम्रे के लिए, तो हमने कह दिया था कि नहीं हम नहीं जा रहे, आप तो हमें मौत के मुंह में ले जाना चाहते हैं, हम नहीं जा रहे आपके साथ, ठीक है ना। तो अब जो है ना अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को रास्ते में ही बता रहे हैं, जब आप वापस आ रहे थे हुदैबिया से, रास्ते में ही इन आयात के जरिए से बता दिया कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना तो ये लोग फिर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे कि जी हमने गलती करी, हम आपके साथ नहीं गए, तो आप जो है ना वो हमारे लिए इस्तग़फार कीजिए अल्लाह ताला से। क्या कह रहे हैं आप, कौन बैत तसव्वुफ बैत तौबा करवा सकता है, इसके लिए भी कोई शराइत है, कौन बैत तसव्वुफ और बैत तौबा करवा सकता है, इसके लिए भी कोई शराइत है। शराइत तो हैं, ठीक है, तो वो शराइत को आपके सामने अभी बयान करें, चलिए थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। ये जो बैत तसव्वुफ या बैत तौबा जो करवाता है या जिसके हाथ पे की जाती है, ठीक है, तो ये जो बंदा होता है ना ये असल में कर क्या रहा होता है, आपसे बैत ले रहा होता है कि वो आपको गाइड करेगा, ठीक है ना, गुनाह छोड़ने में आपको गाइड करेगा। तो इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं कि ये आपकी इस्लाह करेगा, है ना, जो आप गलत कर रहे होंगे उसमें आपको बताएगा कि भैया आप ये गलत कर रहे हैं, जो आप सही कर रहे होंगे उसमें कहेगा कि हाँ तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इस्लाह करेगा ना, ठीक है। तो ये जो इस्लाह करने का काम ये करेगा तो ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है ना, ये किस बुनियाद पर आपकी इस्लाह कर रहा है, इसको किसने इजाजत दी है कि आपकी इस्लाह कर रहा है ना भाई। भाई ऐसे ही कोई बैठ खड़ा हो जाए कि भाई मैंने असल में बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है ना, मैंने बुखारी शरीफ भी पढ़ ली, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ ली, कुरान की तफसीर भी पढ़ ली और फिका की किताबें भी पढ़ ली और ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, तो अब जो है ना मैं चीता बन गया हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं चीता, मैं चीता बन गया हूँ, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और अब जो है ना मैं दूसरों की सलाह करूँगा क्योंकि अब मेरी मैं तो इस काबिल हो गया हूँ दूसरों की सलाह करने के लिए। तो ऐसा शख्स जो है वो फिर सलाह कर सकता है, लोग जो है वो इसको कहें हाँ ठीक है आप तो चीते बन चुके हैं तो अब आप हमें भी चीता बनाएं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए कि जो भी ऐसा क्लेम करेगा कि मैं दूसरों की सलाह कर सकता हूँ अब तो अब आओ मुझसे बैत करो, तो ऐसा शख्स जो है वो सबसे ज्यादा बदतर शख्स है, ठीक है ना। इस शख्स के अपने साथ सबसे बड़ा मसला है, क्यों, इसलिए कि ये तो कलमा ही तकब्बुर वाला कलमा है, ये तो इंतहा दर्जे की खुद पसंदी में मुब्तला है, जब भी तो इस किस्म की बात कर रहा है, क्या समझता है किताबें पढ़ लेने से जो है वो इसकी इस्लाह हो चुकी है, ये किस मखमसे में मुब्तला है, किस गलत फहमी में मुब्तला है ये, तो इसको तो खुद अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, रूह का इलाज तो उसका बाद में होगा, इसको तो पहले अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए किस किस्म की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा शख्स किसी की इस्लाह नहीं कर सकता, ऐसे कोई खड़े होकर के इस्लाह नहीं कर सकता, तो फिर कैसे होगी भाई, ये सुन्नत कैसे जारी रहेगी उम्मत के अंदर, जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के साथ किया और सहाबा ने फिर आगे जनरेशन के अंदर काम किया, तो ये चलता चला जा रहा है आज तक ये काम, तो ये फिर कैसे होगा, वेन नो वन कैन क्लेम कि अब मैं इस्लाह करने के काबिल हो गया हूँ, क्योंकि ये कलमा ही तकब्बुर का कलमा है, तो कैसे होगा फिर ये काम, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ये शुरू दिन में हुआ था, पहले दिन जब ये काम हुआ तो जैसे पहले दिन काम हुआ ना वैसे ही जो है वो आज भी होगा, कैसे पहले दिन कैसे हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम क्या खड़े हो गए थे एक दिन झंडा उठा करके कि जी मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैंने सबकी इस्लाह करनी है, ऐसे तो नहीं हुआ था ना, ठीक है, कैसे हुआ था कि ऊपर से कोई आया था, ठीक है, और ऊपर से जिस यानी जिसको भेजा गया था उसने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था अब आप जाएं करें, खुद से नहीं खड़े हो गए थे, है ना, ऊपर से कोई आया था उसने हुक्म दिया था आप जा करके अब ये काम करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद तैयार भी नहीं थे, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, इतना बड़ा मेरे ऊपर यानी बोझ डाल दिया गया है, जम्मिलूनी मुझे सर्दी लग रही है, मुझे डर लग रहा है, ठीक है ना, ये कैफियत नबी अलैहि सलाम थी, आप सल्लम ये नहीं था कि इंतजार कर रहे थे कि बस अब मुझे कहीं से इशारा मिले और मैं जाकर के लोगों की इसलाह करूं, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जिस तरीके से पहले दिन ये काम हुआ था ना वही तरीका आगे भी चल रहा है कि जो बड़े होते हैं जिनको ऊपर से हुक्म मिला होता है वो आगे हुक्म देते हैं कि जी तुम अब ये काम करो, मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें सिखा दिया, मैंने तुम्हारा तज़किया जो करना था जैसे अल्लाह ताला ने सिखाया था वैसे मैंने कर दिया, अब तुम ये काम आगे करो जा करके। तो जिनको उनके ऊपर वालों ने कहा होता है हुक्म दिया होता है वही ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी को कहते हैं इस्नाद भी, इसी को ऊपर से हुक्म मिलना भी कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वास्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के, नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म सहाबा कराम को दिया, सहाबा कराम से भी ये जो उनके स्टूडेंट्स थे उन तक भी ये हुक्म चलता रहा, आगे चलता रहा आज भी यही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बैत तौबा कौन करवा सकता है या कौन ले सकता है, इसका जवाब ये है कि जिसको उसके ऊपर जो मशायख थे ना उन्होंने हुक्म दिया हो कि जी अब आप जा करके ये वाला काम करें, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये सनद जो है वो लाजमी होती है, बाकी किताबों का पढ़ना और ये करना वो करना ये सारी चीज़ें इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। उफ इतना लंबा आपने लिख दिया, आज का टाइम भी खत्म हो गया, अच्छा क्या करें, अच्छा नहीं, क्योंकि ये क्लास में हमने सिलसिला रखा हुआ है सवाल जवाब का, तो हम से स्ट्रेट तो भी मना तो नहीं कर सकते कि नहीं। चलिए फिर पढ़ लेते हैं आप क्या कह रहे हैं। क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जब तक हम हर वक्त अल्लाह का इस्तेहजार, अल्लाह के इस्तेहजार की कैफियत ना मिल जाए, हम अभी तक अल्लाह से वासिल नहीं हुए, या हमारी अभी तक तज़किया नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कैफियत तो फिर हमें लगता है सिर्फ जो दीन की मेहनत में लगे, स्पेशली मशायख या मुदर्रिस या बहुत बड़े तबलीग के अकाबिर ही को हासिल हो सकती है। आम इंसान जो दीन के साथ दुनियावी शोबे में भी लगे हैं, उनको तो ये कैफियत कभी हासिल नहीं हो सकती। आम इंसान को इस सुन्नत की तरफ कैसे मुतनब्बे कर सकते हैं? हमें वो तो आप छोड़ेंगे। इनका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जो आपकी जो सोच है ना, यानी जो एक सोच का की डायरेक्शन है, ये सोच की डायरेक्शन गलत है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि आप सवाल ये कर रहे हैं कि हम कैसे कंक्लूड करें, हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला का हमें इस्तेज़ार हासिल हो गया है, कैफियत मिल गई है, ये सारी चीज़ें वासिल हो गए हैं कि नहीं हो गए। ठीक है, तो भाई ये कंक्लूड करने की आपको किसने कहा कि ज़रूरत है? आपको ज़रूरत ही नहीं है कंक्लूड करने की। सही है, तो ये कंक्लूजन अपने बारे में ना तो हम कर सकते हैं और ना हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि हम अल्लाह ताला से वासिल हो गए, हमें इस्तेज़ार मिल गया है। ठीक है, तो ये तो हम कभी भी नहीं कर सकते। अब आप छोड़ दें अपनी जॉब, आप चले जाएं कहीं खानकाह में बैठ करके मुराकबे करना शुरू कर दें, तो क्या एक साल के बाद आप वहाँ से यूरेका कहते हुए जो है वो नारा लगाते हुए बाहर निकलेंगे, अब मैं अल्लाह ताला से जुड़ चुका हूँ, अब मुझे इस्तेज़ार हासिल हो गया है क्योंकि मैंने एक साल तक सिर्फ मुराकबे किए हैं, सिर्फ इबादतें करी हैं? क्या ऐसा होगा? उस दिन आपको जो है ना पागल खाने में एडमिट कर दिया जाएगा जिस दिन आप ये हरकत करेंगे। ठीक है ना, बल्कि पागल खाने में तो शायद पहले ही एडमिट कर दिया जाए अगर आप लोगों के हाथ आ जाए कि भाई इसने तो अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़ दी और जाकर के उधर जा कर के बैठ गया, तो आपको पागल पहले ही करार दे दिया जाएगा क्योंकि आप वाकई पागल पने वाला ही हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता ना भाई। भाई अपने लिए आपने कभी भी, चाहे आप जो है वो सारी ज़िंदगी तबलीग में लगा दें, आप तबलीग के बाद भी अपने आप को ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो सोच ही गलत है ना। फिर तो आप इसकी फिक्र ना करें, आप अपने जॉब में रहते हुए भी ये मकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर किए बताए आपको कभी भी डिक्लेयर करने की इजाज़त नहीं है और ना आप कभी डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी ये कि दूसरों के बारे में गुमान रखना कि हाँ जो लोग माशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, शेख हैं, उस्ताद हैं और तबलीगी बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं, तो ये तो भाई उनके बारे में गुमान है ना। आपको क्या पता वो जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? हकीकत तो ये है कि आपको उनका भी नहीं पता। ठीक है ना, जिस तरह अपना नहीं पता उनका भी नहीं पता, लेकिन उनके बारे में अच्छा गुमान रखना ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। अपने बारे में बुरा गुमान रखना कि मैं तो अभी भी नहीं जुड़ा, मैं तो अभी भी किसी काबिल नहीं हूँ, ठीक है ना, तो ये भी फ़ायदा, ये यानी ये भी ज़रूरी है। दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना भी ज़रूरी है, अपने बारे में बुरा गुमान रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बस ये सिलसिला ऐसे ही है कि हमेशा बंदा इसी फिक्र में रहता है कि अभी मुझे और करना है, अभी और करना है, अभी और करना है, चाहे वो तबलीग में जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दफ्तर में जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी और काम से जुड़ा हुआ हो। बहरहाल, तो बाकी है कि इंसान को, यानी आम इंसान को इस सुन्नत की तरफ कैसे मुतनब्बा कर सकते हैं जब आप जो है ना वो अपने आप को आम इंसान समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ, अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करें इंसान। ठीक है, और जो मशायख करने के लिए कहें ना वो करता रहे। ठीक है, तो बस वो आपको जब कहेंगे ना कि आप किसी को बैत की तरफ मुतनब्बे की लफ्ज़ आपने लिखा भी सही नहीं है, लफ्ज़ होगा मुतवज्जे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इस्लाह की तरफ फिक्र करनी चाहिए और दूसरा तरीका ये होता है कि अपने शेख, अगर आपने किसी के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाया हुआ है तो वो आपके शेख हैं, तो उनके मशवरे के साथ जो है वो ऐसी चीज़ें किसी को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जिसके अंदर यानी इन सुन्नतों के बारे में समझाया गया हो कि भाई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इससे ये फ़ायदा होता है, इसको फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ें आप किसी को पहुंचा दें, अब वो सुनेगा, वो पढ़ेगा और फिर वो अल्लाह ताला की तौफीक से इस तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके किस्मत में लिखा होगा तो उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे, आपका काम है पहुँचाना। चलें, टाइम कितना हो गया, 2 मिनट। खैर, तर्जुमा शुरू कर दिया तो देख लेते हैं तो आयतों के और तर्जुमा हो जाए कि ये लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमारे माल दौलत और हमारे घर वालों ने हमें मजबूर कर लिया था, हम मसरूफ़ हो गए थे उनमें, तो इस वजह से आप हमारी मगफरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। यकूलूना बिअलसिनतिहिम, वो कहते हैं अपनी जुबानों से, अलसिना लिसान की जमा, अलसिना अपनी जुबाने से, वो जुबानों से वो कहते हैं, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो नहीं है उनके दिलों में, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ये लोग ऊपर ऊपर से बोल रहे होंगे आपको, असल में ये दिल में ये नहीं समझते। कुल, कह दीजिए, फमन यमलिकु लकुम मिन अल्लाह शैया, के किसका बस चलता है अल्लाह से तुम्हारे वास्ते, यमलिकु लकुम, मलका यमलिकु का मतलब मालिक होना, बस चलना, यहाँ पे उर्दू में प्रॉपर ट्रांसलेशन होगी कि किसका बस चलता है तुम्हारे लिए, मिनल्लाह शैअन, जो के यानी अल्लाह ताला से किसी किसी मामले में, किसी शय में, इन अरादा बिकुम ज़र्रन, अगर वो इरादा कर ले तुम्हारे लिए ज़र का, नुकसान का। मतलब यहाँ पर यमलिकु लकुम मिनल्लाह शैअन का मतलब क्या हुआ कि कौन तुम्हें बचा सकता है अल्लाह ताला से अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नुकसान का फैसला फरमा दे। औ, औ का मतलब होता है या, उर्दू वाला या, अरादा बिकुम नफा, या अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नफा का इरादा कर ले तो अब कौन तुमसे उस नफे को छीन सकता है जो अल्लाह ताला तुम्हें देना चाहे। बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा, बल्कि ये जो अरबी का बल है ना, यही उर्दू में बल्कि की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो वो बल्कि कान अल्लाहु, अल्लाह ताला है, बिमा तअमलून, इल्म रखने वाला, सॉरी, खबीरा मतलब खबर रखने वाला, बिमा तअमलून, जो तुम अमल करते हो उसके बारे में। ठीक है, यानी अजीब अल्लाह ताला ने ना यहाँ पर एक रेस्पॉन्स सिखाया है, रेस्पॉन्स कि हाउ टू रेस्पॉन्ड टू समवन अबाउट हुम यू नो दैट ही इज ट्राइंग टू फूल यू, है ना भाई। ये जो अराबी आएंगे, अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया ना अपने नबी को कि ये आपको नाउज बिल्ला बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप सल्लम को पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके से कभी ऐसा भी होता है कि हमें भी अंदाजा होता है कि अगला बंदा जो आ रहा है ना, ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, तो अब हम उसको कैसे जवाब दें, ओए बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे, कहो जाओ इधर से, निकल जाओ इधर से, राइट, तुम तो हो ही पक्के झूठे, मक्कार, फरेबी, फ्रॉडिये। नहीं, बल्कि कैसा रिस्पॉन्स दिया, अजीब, अल्लाह ताला सिखा रहे हैं रिस्पॉन्स देना, अपने नबी के वास्ते से हमें सिखा रहे हैं कि इनसे ये ना कहिए कि तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बल्कि इनसे कहिए देखो तुम जो भी कर रहे हो ना, तो अल्लाह ताला को सब मालूम है ना भाई, तुम बेशक मैं इंसान हूँ, मुझे तुम्हारे दिनों का हाल नहीं मालूम, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, अल्लाह ताला तो है ना, ठीक है, तो तुम मुझे तो बेशक बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन अल्लाह को तो नहीं बना सकते है ना, तो ऐसे अल्फाज कहो कि उनको ये बात याद आ जाए कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, हु आर दे ट्राइंग टू फूल, आर दे ट्राइंग टू फूल अल्लाह, अल्लाह ताला को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वो सोच भी नहीं सकते क्योंकि अल्लाह को तो ये लोग भी मानते थे। मसला तो इनके साथ ये था कि रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो उनको याद दिला दो कि भाई तुम झूठ बोल करके जो है ना वो अल्लाह ताला को नहीं बेवकूफ बना सकते। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई खैर का फैसला फरमा ले तो कोई भी नहीं, ना मैं ना कोई और, उस खैर को तुमसे छीन सकता है। अल्लाह ताला नुकसान का फैसला कर ले, यानी अल्लाह याद दिलाओ उनको, अल्लाह की बड़ाई याद दिलाओ उनको, ठीक है ना। बाकी आगे पीछे तफसील करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह दो और इसके आगे बल ज़नंतुम, बल्कि ज़नंतुम, तुमने गुमान किया, तुमने ख्याल किया। ज़न, ज़न का मतलब होता है गुमान करना, ख्याल करना। अन्नयन्क़लिबर रसूलु वल्मुमिनूना, के फिर कर ना आएगा रसूल और मुसलमान इला अहलीहिम, अपने घर वालों की तरफ, अबदन, कभी भी। यानी उनसे ये भी कह दो कि तुमने ये गुमान किया था कि भाई ये जो अल्लाह के रसूल और ये जो ईमान वाले जा रहे हैं ना मक्का मुकर्रमा, तो ये तो मौत की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने वापस नहीं आना इधर, ठीक है। तो अब ये भी थोड़ा सा गलती का एहसास भी दिला दो उनको, कभी देखो तुम्हारा गुमान का क्या बना, गलत हो गया ना तुम्हारा गुमान। وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, और मुज़य्यन हो गया था ये तुम्हारे दिलों के अंदर। وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ, और तुमने बुरे गुमान किए, बुरी अटकलें लगाई, यानी बुरी अजम्पशंस करी, ठीक है। وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, और तुम लोग थे तबाह होने वाले, यानी तबाह होने वाले बन रहे थे तुम, ठीक है। यानी ये जो तुमने गुमान किया ना, तो इससे तुम्हारा क्या होना था, तुमने तबाह हो जाना था इस तरह के गुमान करने से। وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, और जो नहीं ईमान लाएगा या जो नहीं ईमान लाए अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, ठीक है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह ताला उसके रसूल के ऊपर ईमान नहीं लाएगा ना, तो हमने इनकार करने वालों के लिए सईर को तैयार करके रखा है। सईर ये जहन्नुम की आग का एक नाम है, ठीक है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ध, और अल्लाह ताला के लिए आसमानों और ज़मीन की मुल्क है, बादशाही है। यग़फ़िरु लिमन यशाउ, माफ़ कर देता है जिसको वो चाहे। वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और अज़ाब देता है जिसको वो चाहे। वकानल्लाहु ग़फूरर रहीमा, और अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हुआ इन आयात के तर्जुमे का। बाकी मजीद तफसीलात इसकी इंशाल्लाह थोड़ा सा तफसीर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मारूफ मसाइल को बहुत ही मुख्तसर है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम कम हो गया है। तो आखिर अलहम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, सवाल एक आपने भेजा है तो देख लेते हैं, अगर मुमकिन हुआ तो आज कवर करेंगे। क्या कोई हमसे भी ऐसा कोई आके कुछ कहे जिस पे हमें शक है कि वो झूठ बोल रहा है, तो क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं ऐसा ना करे अल्लाह सब जानते हैं, या हम सिर्फ सुन के इग्नोर करें कुछ ना कहें। हाँ, दोनों कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, ठीक है। ये खामोश भी रह सकते हैं, उसकी बस उज़ूर को कबूल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दीगर मौक़ों पर अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने उज़ूर को कबूल भी कर लिया, जैसे कि वो जो ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर है ना, वो जो तीन सहाबा वाला किस्सा भी है ना, कि जिनका मुआशरती बायकॉट किया गया था, तो उनके अलावा जितने लोग थे तो वो आकर के इसी तरीके से उज़ुर करते रहे कि ऐसा हो गया, हमारा ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, इस वजह से आपके साथ नहीं जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात सुनते रहे और उनके लिए बाकायदा दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, ठीक है। तो गोया कि सुन करके इग्नोर करना उसको कहेंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर है कि आप उसको थोड़ा सा याद दिला दें कि भाई तुमने ये क्या किया था, तो अल्लाह ताला को तो पता था ना, और तुमने जो है वो जो गुमान किया था, देखो तुम्हारा गुमान जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी उनको जवाब दिया जा सकता है, लेकिन यानी बुरा भला कहना और उनसे जो है वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा रिस्पेक्टेबल किस्म का जवाब है जो कि हम किसी ऐसे शख्स को दे सकते हैं जिसके झूठ बोलने के बारे में हमें कन्फर्म हो कि हाँ वाकई ये झूठ बोल रहे हैं। ताज़ीम का मतलब रेस्पेक्ट है जी। हाँ मतलब रेस्पेक्ट करना। ठीक ओके, सलाम वालेकुम।